श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, श्री श्री गौर निताय की, विंध्य देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, एकादशी महा महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप सबको नए साल 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए वर्ष बहुत ही कृष्णमय हो, भक्तिमय हो, मंगलमय हो। हरी हरी बोल। तो जो आज भजन गाया उसका हिंदी में अनुवाद, शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है, भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है और प्रेम रूपी लता का मूल है। माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूँ। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन उन स्थानों का दर्शन करूंगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा लालायित रहता है तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भर कर मेरा हृदय नाचने लगता है। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। श्री भगवान का चनामृत तथा श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। माधव प्रिया तुलसी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। कृष्ण भजन के अनुकूल जो भी प्राप्त होता है उसे भक्ति विनोद प्रतिदिन सुखपूर्वक ग्रहण करता है। कितना सुंदर भजन है, इसको सुनकर लग रहा है जैसे कोई हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी हो। सुखी सुख है सब। जा कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन करके, भगवान का चनामृत पी के, तुलसी के दर्शन करके, प्रसाद का सेवन करके, जहाँ जहाँ गौरांग महाप्रभु गए उन स्थानों में जाकर तो आनंद ही आनंद है। सब भक्तों से निवेदन, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, पीछे लोग खड़े हैं भक्त लोग, थोड़ा और आगे आ जाए। तो आप सब भक्तों का पुनः स्वागत है। वैसे तो वैदिक कैलेंडर के अनुसार ये कोई नया वर्ष नहीं है, एक साधारण दिन है, आम दिन है। लेकिन ऐसा पूरे विश्व में ऐसा जबरदस्त प्रोपोगेंडा हुआ है कि बहुत कुछ होने वाला आज के दिन, नया साल, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, चारों तरफ ये शोर शराबा है और बहुत सी उम्मीदें रखते हैं लोग इस वर्ष, इस नए दिन से खासकर। नहीं कुछ भी अच्छा हो, मंदिर में कल भी रात को बहुत से भक्त आए थे, आज भी बहुत सुबह भी आएंगे, दोपहर में भी और रात को भी। कोई भी ऐसा दिन, कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों को भगवान के समीप या भक्तों के समीप लाती है तो वो शुभ भी हो जाती है। इसलिए हैप्पी न्यू ईयर, अच्छी बात है, सब लोग आ रहे हैं। लेकिन ये जो हैप्पी न्यू ईयर है, नया साल है, ये क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से है। 2019 ऑफ द लॉर्ड वो बोलते हैं, AD एनो डोमिनो, यानी कि आफ्टर द डिपार्चर ऑफ क्राइस्ट। उससे पहले क्या होता था, 2019 साल पहले थे जो गणना होती थी, BC बिफोर क्राइस्ट। तो आजकल वो AD भी नहीं लिखते, आजकल CE लिखते हैं। CE का मतलब कॉमन एरा, और वो भगवान से कुछ लेना देना ही नहीं है, इसका CE है, 2019 CE, कॉमन एरा है ना, क्राइस्ट को भी भूल गए सब। तो सब लोग बहुत धूमधाम से नए साल में उम्मीदें रखते हैं कि ये नया साल शायद हमें खुशी दे दे इस बारी। पिछले कई सालों से हम देख सको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, होता तो कुछ है नहीं, 10 दिन के बाद बंद हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, फिर नए साल की वेट करते हैं, दिसंबर जाएगा फिर हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। तो इसमें कुछ भी दम नहीं है और वास्तव में कुछ भी नया नहीं होगा। क्या नया होगा, या तो ऐसा हो कि हाँ जी 2019 में कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा,
कोई नहीं मरेगा,
शमशान घाट खाली एकदम लॉक लग जाए, सारे हॉस्पिटल कोई बीमार नहीं पड़ेगा, अगर किसी को कैंसर होगा भी वो ठीक हो जाएगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कोई डेंगू नहीं होगा, है ना। कितना दिल्ली सरकार के इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, हम सब मिलकर डेंगू से लड़ाई लड़ेंगे, एक मच्छर से लड़ने के लिए पूरी दिल्ली इकट्ठी हो रही है ना, बड़ा क्रांतिकारी पोस्टर है, हाथ मिले हुए हैं सबके, सब मिलकर डेंगू को हराएंगे इस बारी, और मच्छर एक है, कमाल है। वो फिर हम बोलते हैं उसे को हैप्पी न्यू ईयर, तो ये होगी इस साल कोई डेंगू नहीं होगा, कोई स्वाइन फ्लू नहीं होगा। नए नए फ्लू आ रहे हैं आजकल, सुना केरला में एक फ्लू शुरू हुआ था चमगादड़ से, क्या नाम था उसका, नेवा, क्या क्या नाम है उसमें, नेवा। तो कोई ऐसा फ्लू नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगी, कोई कैंसर नहीं होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा, सब जवान रहेंगे, किसी को आर्टिफिशियल हेयर इम्प्लांट करने की आवश्यकता नहीं, विग लगाने की आवश्यकता नहीं, हेयर डाई कराने की भी आवश्यकता नहीं है, है ना। और जो बच्चे, जो भी बच्चे पैदा होंगे इस 2019 में, वो हंसते हुए पैदा होंगे, हैप्पी न्यू ईयर, रोते हुए पैदा नहीं होंगे, है ना। ऐसी कुछ नई नई चीजें हो तब तो हमें कहना चाहिए हैप्पी न्यू ईयर, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। बच्चे वही पैदा होंगे रोते हुए, वही मृत्यु को लोग प्राप्त होंगे, बूढ़े भी होते जाएंगे, बीमारियां भी आएंगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, GST भी होगा तो क्या हैप्पी न्यू ईयर, है ना। कुछ नहीं चेंज होने वाला। बहुत समय पहले कहानी सुनी थी कि एक छोटी लड़की जो कि 9 साल की है, वो उसका अगले दिन जन्मदिन है, वो 10 साल की होने वाली है। जब 10 साल की होने वाली तो बहुत बहुत टेंशन में हो गई, वो एंग्जाइटी में आ गई, 10 साल अब मेरा जो आयु है डबल डिजिट में हो गया, है ना, 9 साल से मैं 10 साल की हो गई, तो मैं बहुत बड़ी हो जाऊंगी, अब तो मैं बहुत बड़ी हो जाऊंगी, सुबह उठूंगी तो मेरे को कपड़े, पुराने कपड़े सूट इन फिट ही नहीं आएंगे, नए कपड़े चाहिए होंगे, नया बेड चाहिए होगा, मेरे को सारी ज्वेलरी भी नहीं चाहिए होगी, सब कुछ बड़ा हो जाएगा, मैं बड़ी हो जाऊंगी, सब छोटे हो जाएंगे। तो बेचारी पूरी रात सोई नहीं पाई, लेकिन सुबह उठती है तो क्या होती है, वही हाइट थी तो कुछ भी नहीं बदला। तो इसी ढंग से फालतू की एक्साइटमेंट लाने से चीज़ें बदलने वाली नहीं है ना। कहा जाता है कि अगर हम एक ही कार्य बार बार करें और हर बारी एक्सपेक्ट करें कि रिजल्ट नया आएगा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, पागल है, मूर्ख है। एक ही कार्य बार बार किए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि रिजल्ट नया मिल जाए, रिजल्ट वही आएगा जो पिछली बारी आया था, तो कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। बल्कि देखा जाए तो 1 साल निकल गया, है ना, हमारी आयु वैसे ही बहुत लिमिटेड है, उसमें से 1 साल चला गया, चिंता की बात है, मैं और बूढ़ा हो गया, मैं मृत्यु के समीप चला गया। आयु हरती वही पुनसान उद्यन असन चन्यन सौ, मेरी आयु हर ली गई और मैं खुशियां मना रहा हूं, कमाल है। और कहा जाता है इस समय की गति इतनी सटल है, इतनी सूक्ष्म है, पता नहीं चला। अभी कल मैं यहां पे था, मैं याद कर रहा था, हाँ 2018 जब आने वाला था तब भी हम ऐसे धूमधाम मचाते थे, तब फूड फेस्टिवल सामने था, और 2017 जब आने वाला था तब भी हमने यहाँ फंक्शन किया था, तब भी बहुत भीड़ थी। तो ऐसे 1 साल ऐसे भी जाता है पता नहीं चलता। श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ, हाउ द न्यू ईयर पासेस, होल ईयर जस्ट लाइक अ फ्लैश निकल जाता है, और समय की गति इतनी सूक्ष्म है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 13 अध्याय में विदुर धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं, समय के विषय में बताते हैं, एवं ग्रहेषु सक्ता नाम प्रमाता नाम तदीहिया अत्यक्रमाद अविज्ञात काल परम दुस्तरा। एवं ग्रहेषु सक्ता नाम, जो लोग अपने घर में, अपने घर के संबंधियों से बहुत आसक्त रहते हैं, प्रमत्ता नाम, इतने आसक्त होते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, पागलपन में आ जाते हैं, तदीहिया इन्हीं की विचारों में डूबे रहते हैं, अत्यक्रमाद उनको पता ही नहीं चलता कि अविज्ञात, उनके बिना नॉलेज के अत्यक्रमाद काला परम दुस्तरा, तो जो काल है वो बिल्कुल कैसे आगे निकल जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। यानी कि हम अपने अपने कार्यों में, घरेलू कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समय कैसे आगे निकल गया पता ही नहीं चला। हमें ये भौतिक जगत समय के प्रभाव को भुला देता है, हमें पता नहीं चलता एक साल कैसे निकल गया और ऐसे करते करते कितनी हमारी आयु चली गई। अगर आज के इस कलयुग में देखें तो एवरेज एज कितनी होगी? सिक्सटी कर लें, चलो ऑन द पॉजिटिव साइड 60 साल, एक साल में 12 महीने, तो यानी कि हमारे पास कुल 720 महीने हैं, बस ज्यादा नहीं, 720 महीने, 720 महीने से 12 महीने चले गए और हम खुशियां मना रहे। चाणक्य पंडित कहते हैं एक सेकंड में निकल जाए उसको वापस नहीं लाया जा सकता, गॉन फॉर एवर। यहाँ 720 महीने कुल हैं हमारे जीवन के, उसमें से अगर हम एवरेज निकाले जो यहाँ पर बैठे हैं तो एवरेज एज कितनी होगी? 35, 40, 30 वर्ष तो ऑलरेडी हमारे निकल चुके हैं, तो 360 महीने रह गए और कम होगी लाइफ। 360 महीने में से 12 महीने निकल गए और चलो कितना कम समय रह गया, और इसी कम समय में हमने भगवत धाम जाने के पूरे अपने आप को शुद्ध कर देना है, बहुत समय कम है, तो और हमें ज़्यादा विचार करना चाहिए। एक साल और निकल गया, क्या किया मैंने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और फोकस हो जाना चाहिए मुझे, तो समय बहुत कम है, स्लॉग ओवर शुरू होने वाले हैं आप तो बड़ा फोकस होना चाहिए, बॉल फुटबॉल की तरह दिखनी चाहिए अब, इतना ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, बहुत कम समय बचा है, ऐसे होना चाहिए, है ना। और कैसे समय बीतते पता ही नहीं चलता, समय की गति इतनी सूक्ष्म है। हम देखते हैं कैसे हम नाखून काटते हैं, नाखून फिर से बड़े हो जाते हैं, कोई नाखून डेली हमें दिखता है इतना बढ़ गया, 0.1 मिलीमीटर, फिर 0.2 मिलीमीटर, पता नहीं चलता बढ़ जाते हैं। बाल काटते हैं 15 दिनों में फिर बाल आ जाते हैं, सो काटना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। प्रभुपाद कह रहे हैं एक हिंदी के लेक्चर में, हमें से कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता लेकिन प्रकृति चुपचाप सबको बूढ़ा बना देती है, चुपचाप बूढ़ा बना देती है। मैं भी ट्रेन में जा रहा था तो एक टीनेज कॉलेज का स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर, उससे बात कर रहा था, तो कुछ बात बात में बोला, अंकल बोल दिया उसने मुझे, अंकल मेरे को अंकल बोल दिया। मुझे याद है बचपन में मैं दूसरों को अंकल बोलता था, अब ये हालत था कि लोगों ने मुझे अंकल बोल दिया। जाके मैं गया टॉयलेट में, शीशा देखा मैंने, वास्तव में अंकल के लायक हूँ, हाँ पता नहीं चला कि कब हम अंकल हो गए। और फिर कुछ सालों के बाद लोग बाबा जी बोलेंगे पता नहीं चलेगा समय कैसे निकल जाए ना। और मैं जब उससे बात कर रहा था मुझे अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर याद आ रहे थे, मैं उस लेवल पे था कि मैं भी तो था स्टूडेंट था, और कैसे चल रहा है, क्या करते हो, क्या है हॉस्टल में, क्या है, और उसने मुझे अंकल बोल दिया था तो समय की गति इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, पता नहीं चलता। इसलिए भक्तों को ज्यादा सावधान होना चाहिए कि समय निकल रहा है और इसका कैसे हमें उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। एक एक क्षण हमारे लिए बहुत कीमती है और एक एक क्षण को मैं कैसे कृष्णमय बना सकता हूँ। हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े लोग आते हैं, समय के प्रभाव से चले जाते हैं। अभी हम भागवतम का पिछले दिनों नवस्कंद कल ही समाप्त हुआ है शायद, तो नवस्कंद में बहुत वंशावली है चंद्रवंश की, एक के बाद एक राजा, एक के बाद एक राजा, पूरा पूरा अध्याय राजाओं की वंशावली से भरा हुआ है, कोई तात्पर्य नहीं है, बस एक ही श्लोक में 10-15 राजाओं के नाम है। तो कोई पूछ सकता है इनके नाम क्यों रखे गए हैं भागवतम जैसे अमल पुराण में, और ये राजा कोई साधारण राजा नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी के राजा थे, और उनका नाम आया और बस आगे। इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं कि इन राजाओं के नाम क्योंकि भागवतम में प्रकट हो रहे हैं इनके नाम, तो इनके नामों का उच्चारण करने से ही हम शुद्ध हो जाएंगे, और दूसरा ये दिखाता है कि इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी आए और चले गए, बस हिस्ट्री इतिहास बन गया, केवल एक नाम खत्म। और हम लोगों की क्या स्थिति है? कुछ भी नहीं है। और फिर हम कुछ नहीं है, कैसे हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा? और हमारे जीवन में हमने जिन छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा बना रखा, उनकी क्या स्थिति है? हमारा जीवन इतना तुच्छ है। ब्रह्मा जी का जीवन बताते हैं भागवतम के तीसरे स्कंद में, मैत्रेय मुनि विदुर को समय की गणना से करते हुए कि कैसे अणु एटॉमिक टाइम बताते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 ब्रह्मा जी की लाइफ स्पैन तक जाते हैं, 311 trillion years, 40 billion years, इतना लंबा समय। और फिर बाद में बताते हैं कि ये महाविष्णु के एक निमिष मात्र है पलक झपकने के, महाविष्णु ने ऐसे पलक झपकी ब्रह्मा जी गए, और ऐसे ब्रह्मा जी गए हम पता नहीं कितनी बारी गए, और हर एक जीवन में हमारी कितनी बड़ी बड़ी समस्या हम समझते हैं, मेरे को नहीं पता कितनी समस्या है जीवन में, आओ जी मंदिर में आओ नहीं आपको मालूम नहीं कितनी समस्याएं चल रही है जीवन में, पहले इसको सॉर्ट आउट कर लो। अरे पलक झपकते ही ब्रह्मा जी चले आते हैं, और तो मैं तो पता नहीं कितनी बारी आ गया, कितनी समस्याएं बदल गई मेरी। तो हम उन सबको लेकर बैठे रहते हैं और जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो इसलिए सभी समस्याओं जैसी मर्जी रहे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने मन और बुद्धि को इतना हमें शक्तिशाली रखना चाहिए, स्ट्रांग रखना चाहिए कि वन कैन डिस्टिंग्विश द गोल ऑफ लाइफ अमंग्स अ लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। ये जीवन समस्याओं से भरा ही रहेगा, इन समस्याओं से भरे जीवन में हम अपनी स्पष्ट बुद्धि से अपने जीवन के लक्ष्य को हमेशा पहचानते रहे। समय बहुत तेज गति से निकल रहा है, तो इसलिए नया साल अगर आया भी है तो हमें रिफ्रेश बटन दबाना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए क्या हुआ पिछले साल में, कितने भक्ति में तरक्की की मैंने। इस ओरिनेथ लोकनाथ स्वामी महाराज एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि भक्त लोग को सिंगावलोकन करना चाहिए, जैसे शेर चलता है एक कदम आगे रखता है तो अपनी गर्दन मोड़ के पीछे देखता है, फिर उसको लगता है सब ठीक है, फिर दूसरा कदम आगे रखता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है। तो इस प्रकार से भक्त लोगों को हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करते रहना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा कभी भी कोई समय नहीं था कि मैं कभी कृष्ण को भूला हूं, क्योंकि मैं हमेशा आत्मावलोकन करता रहता था, इंट्रोस्पेक्टिव था, है ना। तो सिंगावलोकन यानी कि एक साल के बाद सिंगावलोकन करेंगे, भक्तों को प्रतिदिन करना चाहिए। सोने से पहले आज मेरा दिन किस चेतना में बीता, क्या मेरा एटीट्यूड था भक्तों से डील करते हुए, क्या मेरे चेतना थी सेवा करते हुए, क्या कितना मैंने जप में अपनी शक्ति डाली, कितना मैंने प्रयास किया, कल मेरी क्या योजना है, क्या तरक इसमें इम्प्रूवमेंट करूंगा। ऐसा करेंगे तो हम प्रगति स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे। एक तरीका है सिंगावलोकन का, और दूसरा तरीका है रैट रेस, चूहा भागता ही रहता है पीछे मुड़ के नहीं देखता, उसको चिंता होती है वो आगे निकल रहा है मैं अभी आगे निकलूं, है ना। तो पूरी दुनिया रैट रेस में लगी हुई है, किसी के पास समय नहीं है थोड़ा रुके सोचे, लेकिन भक्तों को सोचना चाहिए कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो आज एकादशी है, एकादशी के दिन हम प्रभुपाद लीलामृत का पाठ करते हैं, और प्रभुपाद लीलामृत के पाठ में आज प्रभुपाद के जो प्रसंग आएगा वो भी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे हम अपने जीवन को और पर्पसफुल बना सकते हैं। और आज नए साल तथा कथित जो नया साल है इसमें भी हम इस पर मनन कर सकते हैं कि कैसे अपने जीवन को और सार्थक बना सकते हैं। तो प्रसंग चल रहा है हरे कृष्णा गाएं और संघर्ष करें। प्रभुपाद ने भारत में वृंदावन का मंदिर, मायापुर का मंदिर और मुंबई का मंदिर इकट्ठे शुरू किया, और बहुत संघर्ष करना पड़ा तीनों मंदिरों के निर्माण में। मुंबई का मंदिर ऑलमोस्ट तैयार हो गया और गिरिराज महाराज जी को वहां का प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया, और वो भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं उन्होंने। और प्रभुपाद से मिलने बड़े बड़े लोग आए, पिछली एकादशी को आपने पढ़ा होगा कि एक सांसद थे राम जेठमलानी, बहुत फेमस थे अपने समय के, वो भी प्रभुपाद से मिलने आए। अभी फिर आज के प्रसंग में बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। शिला प्रभुपाद बारंबार कहते थे कि इस्कॉन के नेताओं को चाहिए कि प्रभुपाद के सीधे दखल के बिना वे स्वयं प्रबंध करने के लिए अपने आप को तैयार करें। एक दिन वे न्यूयॉर्क में अपने प्रथम वर्ष की कुछ घटनाओं का स्मरण कर रहे थे कि एकाएक वे भविष्य की बातें करने लगे। उन्होंने कहा, मेरे वरिष्ठ लोगों, यह तुम पर है कि तुम इसे विनष्ट ना होने देना। मैं तुम लोगों से विदा ले सकता हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं वृद्ध हो गया हूं। यदि कोई यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मेरे जीबीसी युवकों, तुम अमरीकी हो, तुम पटु हो, तुम में सारी बुद्धि है, अतः इसे नष्ट ना होने देना, इस आंदोलन को और आगे बढ़ने देना। तुम्हारे पास अनेक उत्तम स्थान हैं, चिंता मत करो। यदि मैं चला भी जाऊं तो हानि क्या है,
मैंने अपने विचार और निर्देश पुस्तकों में दे रखे हैं, तुम्हें केवल उन्हें देखना है। मैं सोचता हूं मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया, है ना? तुम भी ऐसा सोचते हो या नहीं? शिष्यों ने उत्तर दिया, हाँ आपने सब कुछ कर दिया है, फिर भी शिला प्रभुपाद हम पूरा भागवत चाहते हैं। शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वह हो जाएगा, यदि यह पूरा ना भी हो तो भी कोई हानि नहीं, तुम लोग सक्षम हो, तुम लोग उसका भार ले सकते हो, अब तुम सारे धन का भार ले सकते हो और मुझे प्रबंध से मुक्त कर सकते हो। मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि इसे विनष्ट ना होने देना। मैंने कभी कभी तुम लोगों को ताड़ना भी दी है जिससे यह नष्ट ना होने पाए। प्रभुपाद ने कहा, उनके लिए देखना सुखद होगा कि उनके इस्कॉन नेताओं के अधीन सारा कार्य उत्तम ढंग से चल रहा है और मैं पुस्तकें लिखता जाऊंगा, यह ठीक रहेगा ना? उन्होंने बताया कि उन्हें अब अधिक खाने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि वे शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं है, इसलिए उनके दोपहर के भोजन में चपाती और चावल लेना कोई अर्थ नहीं रखता। गिरिराज ने कहा कि प्रभुपाद, आपको खाते और प्रसाद का आनंद लेते देख हम भक्तों को प्रसन्नता होगी, किंतु प्रभुपाद ने इसकी अवहेलना करते हुए कहा कि थोड़े फल और दूध से मस्तिष्क को सक्रिय रखा जा सकता है।
तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं मुंबई में अपने शिष्यों से, विशेषकर वरिष्ठ शिष्यों से, कि अब आप तैयार हो जाइए टेक ओवर करने के लिए, मैं किसी भी समय जा सकता हूं और मुझे बहुत सुख मिलेगा अगर आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे और इसको संभाल के रखना, इसको नष्ट मत होने देना। प्रभुपाद बहुत हृदय से बोल रहे हैं, बहुत पीड़ा से बोल रहे हैं, मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं इस आंदोलन को स्थापित करने के लिए, अब आप इसको संभाल के रखना, इसको कहीं नष्ट मत होने देना, है ना? क्योंकि काल के प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाता है और जब तक प्रयास ना किया जाए, कोई एफर्ट्स ना दिए जाएं, तो स्वाभाविक प्रकृति है कि उसमें डिक्लाइन होगा, है ना? पानी हमेशा नीचे गिरेगा, उसको पंप करने के लिए प्रयास चाहिए होते हैं। हर चीज अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरती है, उसको ऊपर उठाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। इसी ढंग से प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की। प्रभुपाद ने कहा, मैंने एक ऐसा घर बना दिया है जिसमें पूरा विश्व समा सकता है। लेकिन ये पूरा घर बना रहे, ये परिवार बना रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभुपाद कह रहे हैं, आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अगर प्रयास नहीं किए, कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं किए, तो हो सकता है सब तितर बितर हो जाए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, आप संभालिए, इसको पकड़िए। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई एक परिवार होता है जिसमें दो भाई रह रहे हैं और पिताजी भी है। आजकल ऐसे परिवार बहुत कम दिखते हैं, जॉइंट फैमिली, सब मिलजुल कर रहने। और जैसे ही पिताजी चले आते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो फिर भाइयों को इकट्ठा रहना इतना आसान नहीं होता, सब अलग अलग हो जाते हैं। आजकल तो पिताजी के जीवित रहते भी सब अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन बाई चांस ऐसा हो भी तो बड़ा मुश्किल होता है पिताजी के जाने के बाद सब भाई इकट्ठे रहें। उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने घर बनाया, हमारे परमपिता के समान है, लेकिन हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद भी ये इस्कॉन संस्था आगे बढ़ी है। जब प्रभुपाद गए तो 108 सेंटर खोले उन्होंने और अब इस्कॉन के कितने सेंटर हैं? 700 सेंटर हैं। तो वास्तव में आगे बढ़ा है और एक पूरा परिवार इकट्ठा रखा हुआ है, लेकिन इस परिवार को अभी आगे 10,000 वर्षों तक चलना है और ये परिवार और बड़ा होता जाएगा। तो जितना बड़ा होता जाएगा उसको एक साथ रखना, उतनी बड़ी चुनौतियां भी आएंगी। नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं, नहीं, आप सब मिलके इसको संभाल के रखना और इसको आगे बढ़ाना। संभालना भी है और बढ़ाना भी है, और ये किसकी जिम्मेवारी होगी? हम सबके जिम्मेवारी होगी, है ना? ऐसा नहीं है जी कोई करेगा वो करेंगे, नहीं, हम सबकी जिम्मेवारी होगी कि हम इस प्रभुपाद के संदेश को अच्छे ढंग से ग्रहण करें और आगे आने वाली पीढ़ी को इसको यथारूप दे सकें, फिर वो पीढ़ी भी इसको यथारूप आगे दे सके, ताकि 10,000 वर्षों तक ये परंपरा चलती रहे।
ये 10,000 वर्ष हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाद, इनको कलयुग का स्वर्णिम युग कहा जाता है। और हम सबका परम सौभाग्य है कि हम इस हरे कृष्ण आंदोलन में भाग ले रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है इसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया है। प्रभुपाद भागवत दशम स्कंद के दूसरे अध्याय के तात्पर्य में बता रहे हैं कि इस हरे कृष्ण आंदोलन के गर्भ में कृष्ण ने प्रकट हुए हैं। तो हमें इस आंदोलन में जिम्मेवारी लेने से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि अपना परम सौभाग्य समझना चाहिए। परम सौभाग्य तब मानेंगे पहले हमें ये स्पष्ट हो कि इस हरे कृष्ण आंदोलन का कितना महत्व है, और दूसरा ये स्पष्ट हो कि शिला प्रभुपाद कितने महत्वपूर्ण है, कितने स्पेशल है। जब ये दो बातें हमें क्लियर हो जाएंगी फिर हम बहुत ललायित रहेंगे इस आंदोलन में, प्रभुपाद जी के आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेवारी लेने के लिए। तो पहले तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि ये इस्कॉन संस्था कोई साधारण संस्था नहीं है, ये हरे कृष्ण आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन स्वयं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शुरू किया गया है और पूरे समाज में जो कि कलयुग में तीव्र गति से नरक की ओर जा रहा है, प्रभुपाद कहते हैं ये हरे कृष्ण आंदोलन पूरे विश्व को नरक में जाने से बचा सकता है। पूरे समाज के लिए जो आशा की किरण है ये केवल हरे कृष्ण आंदोलन है। सब लोग इतने निराशा में है, किसी को पता नहीं। प्रभुपाद भागवतम के प्रीफेस में लिखते हैं कि हालांकि वैज्ञानिक रूप से हमने बहुत तरक्की कर ली है और पूरा का पूरा विश्व बहुत छोटा हो गया, ये प्रभुपाद 50 वर्ष पूर्व लिख रहे हैं जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, बोले एक यूनिफाइड वर्ल्ड हो गया है, एक सारा का सारा विश्व एक जैसा हो गया है, लेकिन फिर भी देयर इज सम पिन प्रिक इन द सोसाइटी। प्रभुपाद की जो इंग्लिश पिन प्रिक आप समझते हैं, बचपन में से आप में से कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे तो हम देखते हैं कि कई बार टीचर के आने से पहले उसकी चेयर पे पिन रख देते थे बच्चे, है ना, और उसका जो बैठता था ओह तो उसको क्या लगता था, और सब बच्चे कुकुर हंसते थे फिर। तो वो पिन प्रिक है, हालांकि दिखने में सोसाइटी में सब कोई तरक्की कर रहा है, इट इज अ पिन प्रिक इन द सोसाइटी। क्या पिन प्रिक है? पिन चुभ रहा है सबको, कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है। हालांकि बाहरी रूप से सब कुछ ठीक है लेकिन हृदय में शांति नहीं है, कुछ खोखलापन है, वो पिन प्रिक है सोसाइटी में। And there is no clue, किसी को क्लू नहीं मालूम कहां से चुभन हो रही है, क्या हो क्या रहा है, लेकिन श्रीमद भागवतम विल प्रोवाइड द आंसर। भागवतम के पास वो क्लू है, हरे कृष्ण आंदोलन के पास वो क्लू है कि आपको ये पिन क्यों चुभ रहा है, कहां पे गड़बड़ है, क्योंकि हम सबने भगवान की शरण नहीं ले रखी। तो इसलिए ये जो आंदोलन है ये बहुत विशेष है, और प्रभुपाद जी कहते हैं इस आंदोलन में जो भी जुड़ता है, जो भी उसके संपर्क में आता है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको पूर्ण रूप से सिद्ध करें, है ना। ही शुड अटेन परफेक्शन, ये हमारी ड्यूटी है। एक बारी नर नारायण प्रभु थे जो हमारे भक्ति माधुरी गोविंद महाराज जी के बड़े भाई हैं, तो नर नारायण प्रभु को प्रभुपाद जी ने अपने कमरे में बुलाया और उसमें प्रभुपाद अकेले थे बिल्कुल, और नर नारायण प्रभु पहली बारी प्रभुपाद से अकेले कमरे में मिल रहे थे, तो बड़े घबराए हुए थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रभुपाद ऐसे बैठे हैं सामने डेस्क है, तो प्रभुपाद ने नारायण प्रभु से पूछा क्या तुम्हें नजर आ रहा है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो वैसे ही बड़े घबराए हुए थे। अब हाँ बोले कि ना बोले, हाँ यस प्रभु है ना, यू कैन सी दिस एंट, बोले एंट कुछ पता नहीं चल रहा था, यस प्रभुपाद यू नो व्हाट इज योर ड्यूटी, बोले कुछ समझ नहीं आ रहा ना कुछ नजर आ रहा है, वो पूछ रहे व्हाट इज योर ड्यूटी, तो घबरा गए, आई डोंट नो प्रभुपाद व्हाट इज माई ड्यूटी। प्रभुपाद ने बोला योर ड्यूटी इज टू मेक दिस एंट कृष्णा कॉन्शियस, कि आपकी ये कर्तव्य है कि आपने इस चींटी को भी कृष्णा भाना भावित बनाना है, ये प्रभुपाद का विजन था, है ना। कोई भी हमारे आंदोलन के संपर्क में आए वो कृष्णा भाना भावित होना चाहिए, ये प्रभुपाद जी का विजन है। एक बारी प्रभुपाद के एक शिष्य विशाल जो बहुत सुंदर बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रभुपाद को बहुत प्रिय, और वो वैसे प्रभुपा से किसी को मिलना होता था तो वो मीटिंग लेते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे, लेकिन विशाल प्रभु का प्रभुपा से एक अलग ही संबंध था। जब भी कहीं मीटिंग चल रही होती विशाल प्रभु ऐसे ही एंटर कर जाते थे कमरे में और प्रभुपा से बातचीत शुरू करते थे, और प्रभुपा उनको डांटते भी नहीं थे, है ना। तो ऐसी एक मीटिंग चल रही थी, विशाल प्रभु मीटिंग के अंदर चले गए और प्रभुपा आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, बोले क्या, बोले व्हाट इज इस्कॉन, व्हाट इज द रोल ऑफ इस्कॉन, व्हाट इज द रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ इस्कॉन, लगातार 3 प्रश्न पूछ लिए सारी मीटिंग के बीच में। प्रभुपाद ने मीटिंग रोकी और पहले विशाल प्रभु का उत्तर दिया क्वेश्चन का, है ना। प्रभुपाद ने उत्तर 6 शब्दों में दिया, प्रभुपाद ने कहा
इस्कॉन क्या है, इस्कॉन का रोल क्या है, इस्कॉन के मेंबर्स का क्या रोल है. बोला बी कृष्णा कॉन्शियस एंड मेक अदर्स कृष्णा कॉन्शियस, खत्म. कि खुद कृष्णा भावना भावित हो जाओ और दूसरों को कृष्णा भावना भावित बनाना है. तो इसलिए ये जो मूवमेंट है बहुत स्पेशल है. और उसमें शिला प्रभुपाद जी एक चैतन्य महाप्रभु के विशेष सैनिक है. ऐसा चमत्कार कभी हो ही नहीं सकता कि 70 वर्ष की आयु में एक वृद्ध व्यक्ति विदेश में जाके एक इतना बड़ा मिशन शुरू कर रहे हैं केवल 40 रुपए के साथ. इम्पॉसिबल, असंभव. चमत्कार पे चमत्कार हुए. आप उस समय की हिस्ट्री पढ़ो, एक के बाद एक मिरेकल्स हुए और अभी भी वो मिरेकल्स होंगे अगर हम प्रभुपाद जी के आंदोलन में होल हार्टेडली भाग लेंगे. तो इसलिए प्रभुपाद हम सबसे ये एक अपील कर रहे हैं कि आप इसको मिटने मत देना, आप इसको संभाल के रखना. बहुत कष्टों से प्रभुपाद ने इसको, इस आंदोलन को खड़ा किया है. तो कैसे हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए इसमें जिम्मेवारी लेने के लिए. जितना ज्यादा हम इस आंदोलन में जिम्मेवारी लेंगे, प्रभुपाद एक चिट्ठी में लिख रहे हैं कि ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट विल फोर्स यू टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. हम जब जिम्मेवारी लेते हैं यहां पे तो हम अपने आप भक्ति में हमें फोर्स किया जाएगा आगे बढ़ने के लिए. और जितना हम जिम्मेवारी लेंगे, प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में कि जो भी इस आंदोलन में जिम्मेवारी लेगा उसको असीमित कृपा प्राप्त होगी. और जो कृपा मिलेगी वो कल्पना से परे है, कल्पना से परे है. ऐसी ऐसी कृपा मिलेगी. ये प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी है, ब्रह्मा जी जब सो के उठते हैं उनके दिन के बाद, तो देखते हैं चारों तरफ बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और पूरा गर्भोदक सागर में तूफान ही तूफान मचा हुआ है. और उनको समझ नहीं आ रहा सृष्टि की रचना कैसे करनी है, कैसे 14 भुवनों में अलग अलग ग्रहों में अलग अलग जीवों को डालना है, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको. बड़े घबराए हुए हैं और उन्होंने प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दी. जब उन्होंने प्रार्थनाएं की तो भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि तुम घबराओ मत, तुम सृष्टि की रचना कर पाओगे और एक कार्य तो पहले हो ही रखा है. सो प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब हम कोई जिम्मेवारी उठाते हैं इस ब्रह्म माधव गोड़िया संप्रदाय में, तो हमें भी आशीर्वाद मिलता है और जो सेवा है उसको भी आशीर्वाद पहले से ही मिला हुआ है. भगवान का ये कार्य तो पहले हो ही रखा है, तुम तो केवल माध्यम बन जाओ. तो हम जब कोई भी सेवा की जिम्मेवारी उठाते हैं वो सेवा ऑलरेडी हो रखी है, बस तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ. तो द सर्विस इज ऑल्सो ब्लेस्ड एंड द पर्सन इज ऑल्सो ब्लेस्ड. हमने केवल क्या करना है, ये वॉलंटियर करना है, हाँ मैं ये जिम्मेवारी लेने को तैयार हूं. और हम देखते हैं प्रभुपाद जी के टाइम में कैसे कैसे चमत्कार हुए. प्रभुपाद जी ने अपने 3 गृहस्थ भक्तों को लंदन में भेजा प्रचार करने के लिए. नए नए भक्त, 3 गृहस्थ, जैसा प्रभुपाद ने कहा किया. भक्ति सिद्धांत सेवी ठाकुर महाराज ने भी अपने सन्यासी शिष्यों को भेजा था लंदन में, वो कुछ नहीं कर पाए. और 3 गृहस्थ भक्त जो अभी जुड़े थे, जो कुछ महीने कुछ साल पहले हर प्रकार के नियम तोड़ रहे थे, प्रभुपाद ने उनको एम्पावर किया और उन्होंने चमत्कार कर दिया. लंदन में नया सेंटर्स खुल गया, एकदम प्रचार शुरू हो गया है ना. ऐसे ही प्रभुपाद एक बारी बैठे थे विदेश में और मायापुर के बारे में बात कर रहे थे कि मायापुर में हम बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे, पूरा हमारा हेडक्वार्टर होगा. तो शिष्यों ने ऐसे पूछ लिया, नहीं प्रभुपाद, इतने बड़े मंदिर में डीटी वर्शिप कौन करेगा, पूजा कौन करेगा. तभी वहां पे 2 सज्जन अंदर घुसते हैं कमरे में, कोट पैंट टाई डाले हुए है ना, और दोनों की शक्ल एक जैसे लग रही थी. तो प्रभुपाद ने कहा, दीज 2 जेंटलमैन विल टेक केयर. अभी आए थे, अभी अंदर घुसे ही हैं, कोई बातचीत नहीं हुई. और ये दोनों भाई कौन बने, इस गेस्ट पंकज आंगरे प्रभु और इस गेस्ट जानेवास प्रभु. चमत्कारी हुए हैं, ये आंदोलन चमत्कारी है. इसी प्रकार से अमेरिका में हरे कृष्णा आंदोलन में भक्त लोग कीर्तन निकालते थे सड़कों पे, तो एक व्यक्ति थे बड़े आकर्षित हो गए, बोले कि मैंने इसे हरे कृष्णा लोगों से मिलना है. तो उनको ढूंढते ढूंढते वो भारत में आ गए, भारत में भी बॉम्बे में वो ढूंढ रहे हैं कहीं उनको मिल नहीं रहे. तभी उनकी मुलाकात श्याम सुंदर प्रभु से होती है. बोले आप लोग कहाँ थे, मैं तो अमेरिका से ढूंढते थे, बॉम्बे आ गए, आप मिल गए. तो श्याम सुंदर प्रभु, चलो हम आपको अपने गुरु से मिलाते हैं. तो उनको लेके आकाश गंगा बिल्डिंग में, वहाँ प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद ने उनसे बातचीत की. मालूम चला उनको थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर का ज्ञान है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं। प्रभुपाद ने तुरंत कागज निकाला, मैप ऐसा बना दिया, बोले ये है मुंबई का मंदिर, आपको बनाना है। बोले मुझे तो कुछ आते नहीं। आए कोई बात नहीं, और कल मैं दीक्षा दे रहा हूँ, दीक्षा भी ले लेना। अरे उनका दीक्षा दे दिया और उनका नाम रखा सुरभि, और वो भगवान का बंगाली एक्सेंट था तो सौरभि ऐसे सुनाया, तो उनको सुनाई दिया सौरव, है ना। तो बोले उनको समझ में नहीं आ रहा था ये मैं कहाँ आया हूँ, किससे मिला हूँ, मैं मिलते ही मुझे जिम्मेवारी दे दी कि मंदिर का कंस्ट्रक्शन करो, मुझे कुछ पता ही नहीं है। फिर पता नहीं कहाँ मुझे बैठा दिया, फिर बोले नया नाम है आपका सौरव, सौरव मतलब दुख, मैं क्या हूँ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उनको भक्तों ने बताया नहीं नहीं सौरव सौरव नहीं है, सुरभि है, सुरभि ये गोलोक धाम की गाय है सुरभि, तो उनका नाम सुरभि पड़ा। और बाद में इतने इंस्ट्रूमेंटल बने उन्होंने कि वो उन्होंने मायापुर मंदिर, वृंदावन मंदिर और मुंबई मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर, पूरा डिजाइन तैयार किया, कितने सुंदर मंदिर बनाए, है ना। और वो उनका हेडक्वार्टर था हमारा पंजाबी बाग का पुराना सेंटर 14/63 रोड पे, और वहाँ पे पूरे पूरी फोटोज लगी होती थी वृंदावन मंदिर की, मायापुर मंदिर की, मुंबई मंदिर की। तो उनका हेड ऑफिस था, आर्किटेक्चर का ऑफिस था यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ऐसे कमाल हुए हैं। अगर कोई भक्त बस वॉलंटियर करेगा कि हाँ मैंने जिम्मेवारी लेनी है, तो पूरी की पूरी गुरु परंपरा की उसको शक्ति प्राप्त होती है, हिचकिचाना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जयप्रदा का स्वामी महाराज को लेकर आए, मायापुर की लैंड दिखा रहे थे, बोला टेक इट, डेवलप इट एंड एंजॉय इट। अरे वो बोलेंगे ये हमारा इस्कॉन का हेडक्वार्टर बनेगा। तो जयप्रदा का स्वामी महाराज कंफ्यूज, प्रभुपाद कुछ है ही नहीं, क्या करूं। बोले यहाँ एक अद्भुत मंदिर बनेगा। जब तक स्वामी महाराज ने कहा कि मैं तो आई एम जस्ट ए यंग मैन, नवयुवक अभी अभी आया हूँ, आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे क्यों दे रहे हैं। प्रभुपाद ने उनको डांटा, पर बोला दिस इज बॉडली कॉन्शियसनेस, ये देहात्म चेतना है कि मैं यंग मैन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस मैंने बोल दिया, प्रभुपाद के गुरु परंपरा का आदेश आया, और देखिए कितना बड़ा जब तक स्वामी ने कितनी सुंदर सेवा की और कैसे डेवलप किया पूरे मायापुर प्रोजेक्ट। तो इसलिए इसको अपनी सीमित बुद्धि से हम नहीं समझ सकते ये कैसे हो गया। हम लोग जिम्मेवारी लेने में कतराते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये और वो नहीं। जिम्मेवारी लेने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो प्रॉपर एटीट्यूड है, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि किसी को कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलती है तो उसको किस चेतना में इसको स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं उसको इस चेतना में स्वीकार करना चाहिए कि मैं बिल्कुल अयोग्य हूं, पूर्ण रूप से अयोग्य हूं, और मैं पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर करता हूं, और तब पूरी की पूरी एम्पावरमेंट आएगी। ये अपने आप को अयोग्य मानना, ये वो पात्र है जिसमें सारी की सारी शक्ति आएगी। और कोई बोले नहीं अब मालूम चला कि मैं कितना योग्य, जानते नहीं मैं कितना क्वालिफाइड हूं, और मैं ही मेरे में कैसे स्किल्स हैं, और हम खाली अपने स्किल्स पर निर्भर रहे और केवल औपचारिकता के लिए बोले बस कृपा करिए बस, फिर वो अंदर से मैं जानता हूं मैं कितना स्किलफुल हूं, मैं सब कर लूंगा, तो वो परिणाम नहीं आएगा, वो आनंद नहीं आएगा, वो रियलाइजेशंस नहीं आएंगी, वो समर्पण नहीं होगा। तो इसलिए पूरा अपने आप को अयोग्य मानते हुए इस आंदोलन में हम सेवा करने के लिए, जिम्मेवारी लेने के लिए बड़े तत्पर रहे। जहां बोलते हैं कि इस आंदोलन में जिम्मेवारी लेनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु जी हमें कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट दो फिर बताएंगे आप, दे दो एक जान लगा देंगे आप भी, देखो क्या किया हमने, टेक इट डेवलप इट एंड एंजॉय इट, ऐसा एक बार ही बोल दो हमें, फिर देखो हम भी एंजॉय करेंगे। जिम्मेवारी लेने का मतलब ये नहीं कि ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले तो हम कुछ करके दिखाएंगे, कोई भी छोटी सी सेवा मिल जाए उसको पूरी जिम्मेवारी से करना चाहिए, और छोटी सेवा करने के लिए भी अपने आप को अयोग्य मानना चाहिए, चाहे वो झाड़ू लगाना है, बर्तन धोना है, प्रचार करना है, कुछ भी करना है। पूरी की पूरी गुरु परंपरा तैयार बैठी है हमें एम्पावर करने के लिए, केवल हमें वो इच्छा नहीं है कि हाँ मैंने आगे बढ़ के करना है। कोई भी अयोग्यता हमें रोक नहीं सकती, कोई भौतिक परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि इस भक्ति में इतनी शक्ति है, गुरु परंपरा के आशीर्वाद में इतनी शक्ति है ना। हम देखते हैं प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए जिसका नाम था क्रेजी पीटर, लोग उनको बोलते थे, है ना।
बिल्कुल पागल की तरह वो व्यक्ति थे और सारे भक्त लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि ये क्या करेगा, उसको ध्यान ही नहीं देते, उसका अवहेलना करते थे। प्रभुपाद ने कहा नहीं, दिस डिवोटी इज गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल सर्विस। और बाद में कौन बने, श्रुताकृत प्रभु, जिन्हें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के सारे ग्रंथों को अनुवाद किया। सब ये गुरु परंपरा की शक्ति से होता है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि इस आंदोलन को संभाल के रखना, और ये तभी होगा पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे और अपने सौभाग्य को जानेंगे और इस सौभाग्य को अपने हाथ से निकलने नहीं देंगे। इसको संभाल के रखना है और इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग का प्रभाव ये है। प्रभुपाद कहते हैं कलयुग हिपोक्रेसी और क्वेरल, दोगलापन और झगड़े का युग है। छोटी छोटी बातें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, झगड़े होंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस आंदोलन को खतरा बाहर से नहीं है, अंदर से ही है। और अंदर से खतरा तब होगा जब इसके हम महत्व को समझेंगे नहीं। भगवान की बहिरंगा शक्ति कई तरीके से काम करती है और इसका सबसे सूक्ष्म रूप है भक्तों के बीच में गलत फहमी पैदा करके, और हम सब तितर बितर हो जाएंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी आर नोवेयर। परम पूजनीय भक्ति चारु स्वामी महाराज ने हमें एक सेमिनार, उनका मैंने अटेंड किया था, और वो अपने अंत्य प्रभुपाद की अंत्य लीला में भक्ति चारु स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के साथ थे। तो प्रभुपाद अंत्य लीला में थे तो एक शिष्य ने उनको पत्र लिखा और शिष्य ने कहा भागवतम के नवे स्कंद में हम ययाति महाराज की कथा पढ़ते हैं, कैसे ययाति महाराज ने अपने पुत्र से अपना यौवन एक्सचेंज कर लिया। प्रभुपाद मैं युवक हूं, मेरे तो इंद्रियां संयमित नहीं है, आप मेरा शरीर ले लीजिए और अपना बुढ़ापा मुझे दे दीजिए और आप मिशन को आगे बढ़ाइए। प्रभुपाद ने उत्तर लिखवाया अच्छे सेंटिमेंट्स हैं लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो ये तब मालूम चलेगा कि मेरे जाने के बाद आप आपस में कितना सहयोग करते हो, कोऑपरेट करते हो। ये जज्बात दिखाना तो बहुत बड़ी बात है, मेरी जान ले लो आप जीवित हो जाओ, ये सब तो कहने की बातें हैं, भावुकताएं हैं। असली प्रेम तब मालूम चलेगा कि मेरे जाने के बाद आप कितना कोऑपरेट करते हैं, और कोऑपरेशन शब्द कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए जहर के घूंट पीने पड़ते हैं, अपने ईगो को भूलना पड़ता है और प्रभुपाद के प्रेम को याद करना पड़ता है, तब जाके कॉपरेट होता है। तो इसलिए ये आगे आने वाले अभी जैसे प्रभुपाद जी जब अप्रकट हुए तभी इसको हमने बहुत हलचल मची 80s में। प्रभुपाद को शिष्य डटे रहे, सारे के सारे तकलीफों को सहेंगे, कॉपरेट करते रहेंगे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। वो शिष्य डटे रहे तभी आज इस्कॉन इतना फैला और हम सब यहां पर हैं। अगर वो नहीं डटे रहते तो हमें कहां मौका मिलता। इसी ढंग से प्रभुपाद की जो पहली पीढ़ी है अब ये भी अप्रकट होनी है धीरे धीरे, उसके बाद फिर हम लोगों पे सारी जिम्मेवारी आएगी, और हम लोगों ने इसको सही ढंग से संभाल लिया तो हम प्रभुपाद को कहेंगे हाँ हमने अगली पीढ़ी तक इसको पहुंचाया। अगर हम तितर बितर हो गए तो फिर क्या हुआ, ये संदेश अगली पीढ़ी तक नहीं जा पाएगा। तो उन्होंने पहला बताया पॉइंट कि आपस में जो भी हो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, कोऑपरेट करें। दूसरा प्रभुपाद ने भक्ति चारु स्वामी महाराज को बताया अपने अंत समय में, नेवर 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 लीव इस्कॉन। कुछ भी हो जाए, किस भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी इस्कॉन छोड़ के मत जाना। प्रभुपाद बोला इस्कॉन इज माय बॉडी, इसको छोड़ के मत जाना। बहुत सी चीजें हमें कई बार दिखती हैं, ये संस्था में ये है, वो है, वो है, ये है, तो सिद्धांत तो पूरा दिव्य है लेकिन कई बार मैनेजमेंट पूरा दिव्य नहीं होता, मैनेजमेंट कभी दिव्य हो भी नहीं सकता, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। लेकिन उसको देखकर हमने इतने दिव्य जो सिद्धांत से इतने सुंदर मौके को खोना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर अवसर है, बहुत से लोग हमें मिले, बोला हम कई जगह धक्के कार के आए, कौन कौन सी संस्थाओं में नहीं गए, लेकिन स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी की संस्था से बढ़कर और कोई शुद्ध संस्था नहीं है। ये क्लैरिटी है, प्रभुपाद ने इतनी क्लैरिटी दी है, इतने सिस्टम अच्छे दिए हैं, इतना स्मूथ वर्किंग दिया है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है ना। थोड़ी बहुत त्रुटियां आपको दिखेंगी, वो त्रुटियां कौन लाते हैं, हम जैसे बदजीव जब बीच में आ जाते हैं तब उत्पात मचाते हैं, हमारा रजोगुण और तमोगुण सामने निकल के आता है तो गंदगी दिखती है, तो उसको ना देखेगा। जैसे बताया जाता है कि गंगा में स्नान करने गए तो कुछ बबल्स होते हैं उसको पीछे किया और बैठ गए,
हम एक बार पुस्तक वितरण के लिए एक व्यक्ति के पास गए थे, तो कई बारी जो बाहर के लोग हैं, नए लोग बहुत सी शिक्षाएं दे देते हैं, है ना। तो उन्होंने बताया, ऐसी बात चल रही थी, देखो कहते आध्यात्मिक संस्थाओं में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। उन्होंने बताया, देखो फिर भी जी आपको नदी पार करनी है तो बोट में बैठना ही पड़ेगा, और बोट में कई बार देखते हैं गंदगी भी है, गीली भी है, उसको साफ करके आप बैठ जाते हो। आपको मालूम है इसी बोट ने मुझे नदी पार करानी है। उसी प्रकार से यही संस्था है जो भगवत धाम ले जाएगी, थोड़ी बहुत गंदगी रहती है उसको साफ करके वहीं बैठ जाओ और आगे चलो। तो बहुत सुंदर बात लगे ना। हम कह रहे हैं क्या गंदा है, मैं नहीं बैठूंगा इस बोट में। मत बैठो, ऐसे खड़े रहोगे, भवसागर में पड़े रहोगे, ये गंदगी है, ये कीचड़ है। नहीं भैया, जो है है, लेकिन इसका उद्देश्य देखो कहाँ ले जा रही है। तो इसलिए नेवर नेवर लीव इस्कॉन। हम इस बोट में बैठे रहें, अपने आप भगवत धाम पहुंच जाएंगे। उस बोट में जाके उछल कूद ना करें, उत्पाद ना मचाएं, साथ वाले बेड को तंग करें, उसको तंग करें, उछल कूद करें और फिर नीचे गिर जाएं। वहां बैठे रहो चुपचाप शांति से। तो ये दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि आप बैठे रहें, उछल कूद ना करें और आपस में कोऑपरेट करें, इसके लिए आवश्यक है कि हमेशा GBC को अपना अथॉरिटी माने। GBC इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। ऐसा नहीं करेंगे तो हर कोई अपना मत देता रहेगा, ये नहीं तो वो क्यों, वो नहीं तो ये क्यों, ऐसा नहीं तो वैसा क्यों। और कुछ सुनेंगे, इतनी बड़ी सोसाइटी होगी कैसे मैनेज किया जाएगा। इतनी बड़ी आध्यात्मिक संस्था को मैनेज करने के लिए बड़े बड़े हार्वर्ड स्कूल के MBAs भी फेल हो जाते हैं। आध्यात्मिक संस्था, वो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, असंभव है मैनेज करना, केवल इंस्पिरेशन से काम चलता है। तो ऐसे में कोई मैनेजरियल प्रॉब्लम होती है, कुछ भी है, तो GBC इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। तो ये तीन सिद्धांत अपने जीवन में हमेशा याद रखें। और फिर प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें जिम्मेवारी लेनी है, और ये जिम्मेवारी तीन स्तर पे है। सबसे पहले जिम्मेवारी लेनी है अपनी साधना की। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो मैंने नियम बताए हैं आपको, विशेषकर मॉर्निंग प्रोग्राम, प्रभुपाद कहते हैं इस मॉर्निंग प्रोग्राम में पूरी गुरु परंपरा की शक्ति छिपी हुई है। और कोई किसी भी स्थिति में है, नया भक्त है, पुराना भक्त है, उसको इस मॉर्निंग प्रोग्राम को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जो जितनी गंभीरता से लेगा उसको उतनी ज्यादा गुरु परंपरा की शक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए अपनी साधना के प्रति जिम्मेवारी लेनी चाहिए। 16 माला ध्यान पूर्वक जप करें, 4 नियमों का सख्ती से पालन करें। जब हम 16 माला का जप करते हैं तो कई बार हम बोलते हैं आज माला ठीक नहीं हुई। ये क्या बात हुई, ठीक नहीं हुई, ठीक नहीं की। सीधा बोले, आज मैंने अपना हृदय माला में नहीं दिया, आज मैंने माला ठीक नहीं की। जिम्मेवारी ले, यानी कि आज माला ठीक नहीं हुई। ठीक नहीं हुई कैसे ठीक हो जाएगी, चांस की बात है, कभी ठीक होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो नहीं हुई। मैं तो पूर्ण रूप से चांस पे निर्भर करता हूँ। हेड आएगा कि टेल आएगा पता नहीं, आज कितना सोऊंगा मुझे पता नहीं, नहीं भी सो सकता, सो भी सकता हूँ, कुछ पता नहीं क्या है। जब जाग गया तभी सवेरा, तब माला शुरू हो गई। नहीं, तो जिम्मेवारी लेनी, आज मैंने माला ठीक करनी है, प्रार्थनाएं करूंगा, प्रयास करूंगा, नींद्रा ही तो उठ के संघर्ष करता रहूंगा, लेकिन मैंने माला ठीक करने का प्रयास करते रहना, जिम्मेवारी मेरी है। गुरु ने दीक्षा दे दी, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी है इस माला को मैं सावधानी से करूं, मेरी जिम्मेवारी है 4 नियमों को सही ढंग से करूं, मेरी जिम्मेवारी है मैं शास्त्रों को पढ़ूं। पढ़ना है, जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक दर्शन कमजोर होगा तो ये दर्शन भी ठीक नहीं होंगे, फिर भगवान भी बड़े ऑर्डिनरी लगेंगे, भक्तों के दर्शन भी बड़े ऑर्डिनरी लगेंगे, क्योंकि दर्शन कमजोर है, भागवत का दर्शन कमजोर है, वो सिद्धांत कमजोर है। तो प्रतिदिन पढ़ें। तो साधना के प्रति मेरी जिम्मेवारी। दूसरा, संबंधों की भी मेरी जिम्मेवारी है कि मैं भक्तों से अच्छे मधुर संबंध रखूं। प्रभात कहते हैं, ददाति प्रतिगणाति गुह्यम ख्याति पूछति भुंगते भोजते चैव क्षणविद प्रीति लक्षणम। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, द इस्कॉन सोसाइटी इज बीइंग नरिश्ड बाय 6 लविंग एक्सचेंजेस। पूरे इस्कॉन सोसाइटी का जो पोषण हो रहा है वो भक्तों के बीच में ये 6 प्रीतिपूर्वक व्यवहार से हो रहा है। बहुत सुंदर बात है। अक्सर हम समझते हैं कि इस्कॉन का पोषण लक्ष्मी से हो रहा है, धन आ रहा है तो तभी देखो जी कितना ऐश्वर्य है यहाँ पे, आपके यहाँ तो बात ही अलग है जी, लोग ऐसे बोलते हैं, इतना प्रसाद खिलाते हैं, इतना खर्च करते हैं, बहुत लक्ष्मी आती होगी आपको। पहले कहते थे बाहर से आती होगी, अब बोलती बाहर जाती है। नहीं, लक्ष्मी से नहीं है, लक्ष्मी निश्चित रूप से आवश्यक है हमें, लेकिन जो इस्कॉन का जो पोषण है वो है भक्तों के बीच में प्रेममय संबंध से। तो इसकी जिम्मेवारी भी मेरी है। बहुत आसान है, कुछ रिश्तों में त्रुटि हुई तो दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान है। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते थे, कब भी ऐसा रिलेशन में ब्रेकडाउन हो, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी गलती है ना। तब ऐसा करेंगे नहीं, दूसरे में ही फॉल्ट देखते रहेंगे तो अपने में इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे ना। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज से किसी ने पूछा, वो भक्त ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। उन्हें उत्तर दिया, आपके मन में उसके अवगुण इतने छाए हुए हैं, आप कृष्ण का स्मरण कैसे करते होंगे? इतने हृदय से आप स्पॉन्टेनियसली रागनों का भक्ति में उसके अवगुणों का कीर्तन कर रहे हैं, तो कृष्ण का कैसे स्मरण कर पाओगे? इतनी घृणा, इतना वो छिपा हुआ है, क्यों? कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि मेरे अंदर भी अवगुण है। तो इसलिए जिम्मेवारी मुझे लेनी है संबंध सुधारने के लिए। और तीसरा, प्रचार की सेवा, सेवा करनी है तो उसके लिए भी जिम्मेवारी लेनी है मुझे, आगे बढ़ना है। जा रहे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो तारे देश। कि खुद ज्यादा से ज्यादा मैं पुस्तकों को बांटू और पढ़ू। प्रभुपाद कहते हैं, आई विल ऑलवेज लिव इन माई बुक्स। हम चाहें कि प्रभुपाद हमेशा हमारे बीच में रहे, तभी ये परिवार एक संगठित रहे और ये सिद्धांत आगे यथारूप चलता रहे, इसमें कोई डेविएशन ना हो। तो क्या करना पड़ेगा? प्रचुर मात्रा में ग्रंथों का वितरण करना होगा। जब जब हमने इतिहास में देखा, जब जब ग्रंथों का वितरण रुका है, तब तब सिद्धांत में, परंपरा में डेविएशंस आई है। इसलिए आगे 10,000 वर्षों तक हमने इस्कॉन संस्था को बना के रखना है, सिद्धांत को रखना है, तो बहुत आवश्यक है कि इस पुस्तकों का, पुस्तकें ही आधार है, उसका हम वितरण करें और साथ ही साथ पुस्तकों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो इस प्रकार से आज एकादशी है, आज की एकादशी का नाम है सफला एकादशी, है ना। और ये बहुत संजोग की बात है कि पहली जनवरी के दिन ये एकादशी है, और अपने पूरे जीवन को हम सफल कर सकते हैं अगर हम अपना पूरा जीवन प्रभुपाद के इस आदेशों पर समर्पित कर दें। ये कुछ भी हो जाए, इस इस्कॉन संस्था को हम बचा के रखें, आगे इसको नष्ट ना होने दें। प्रभुपाद कितनी बारी कह रहे हैं इसको आगे बढ़ाएं, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने चर्चाएं की कि हमें इसकी जिम्मेवारी उठानी है, और जितना ज़्यादा जिम्मेवारी उठाएंगे उतनी ज़्यादा हमें कृपा मिलेगी। और जिम्मेवारी हमने अपनी साधना के लिए भी, संबंधों के लिए भी, सेवा के लिए भी, और फिर हमने भक्ति चारु स्वामी महाराज के सेमिनार के 3 पॉइंट्स भी डिस्कस किए कि कैसे हम आपस में एक दूसरे से कॉपरेट करें, कभी इसको उनको छोड़ के ना जाएं, और जीबीसी को मुख्य अथॉरिटी के रूप में स्वीकार करें, और आगे आने वाले समय तक ये संदेश यथारूप बना रहे, इसके लिए हम पुस्तकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसका वितरण करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? जीबीसी है गवर्निंग बॉडी कमीशन, इसमें लगभग 34 से 35 सदस्य हैं। इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड बॉडी को मैनेज करने के लिए एक ग्रुप मैनेजमेंट है, वन मैन शो नहीं है, ये कलेक्टिव मैनेजमेंट। हाँ जी, ये हेडक्वार्टर्स, उनके मीटिंग्स अलग अलग स्थान में होती रहती हैं, वर्ष में एक बार ये मायापुर में मिलते हैं और दूसरे कहीं और मिलते हैं। हाँ जी, चेयरमैन रोटेटिंग रहते हैं, दो दो साल में मुझे ध्यान दें।
धन्यवाद भाषा। अभी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप बता रहे थे कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर्स मूवमेंट में लेते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं वी गेट अनलिमिटेड मर्सी। तो एक परेशानी मैंने अपने जीवन में देखी कि जैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, और अगर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हमारे लिए करना मुश्किल है, कठिन है, या फिर हमें इतनी अच्छी नहीं लगती है, तो फिर क्या होता है कि अगर हम देखते हैं कि बाकी भक्त उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले रहे, या उनका जो है वो भक्ति में जीवन बड़ा आरामदायक चल रहा है, तो फिर थोड़ा सा खराब लगता है, थोड़ा सा ईर्ष्या सा होता है, और फिर खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इच्छा नहीं होती है, मतलब और मुश्किल हो जाता है। फिर लगता है ठीक है हम भी आराम से अपना जो है अपना जो सोलह माला का जब चार नियमों का पालन उससे भी भगवद्धाम जा सकते हैं तो जो है वो तो फिर उसमें लगता है कि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब हम संघर्ष करते हैं सैक्रिफाइस करते हैं जो अच्छा लगता है उसमें तो कोई परेशानी नहीं है कोई कुछ भी करे हमें खुद ही अच्छा लग रहा है तो सब बढ़िया चल रहा है लेकिन जहाँ मुश्किल आती है जहाँ हमें भी हमारे लिए भी तपस्या होती है तो फिर हम थोड़ा कंपैरेटिव मूड हो जाता है कि बाकी भी क्या वो उतना सैक्रिफाइस कर रहे नहीं कर रहे क्या वो भी उठा रहे हो जब नहीं उठाते हैं तो फिर हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है तो कैसे हम अपना जज्बा अपना सब बिना किसी और डिस्ट्रैक्शन के बिना डिस्ट्रैक्ट हुए हम फिर भी वो करते रहें
थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक क्वेश्चन अच्छा प्रश्न पूछा आपने और ये हमारी मानसिकता है इस ढंग से हम कंपेयर करते हैं लेकिन अब सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे तो जो भक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा और रिलैक्स मोड में है वो बहुत कुछ खो रहा है बहुत कुछ खो रहा है और कुछ समय के बाद उसके लिए सोलह माला चार नियम करना भी संभव नहीं होगा सोलह माला चार नियम अपने प्रयासों से नहीं कर रहे कृपा से हो रहा है और जो कृपा लेने को तैयार नहीं है तो उसे कृपा विड्रॉ कर ली जाती है तो कई बार देखा है ये भक्ति रिलैक्सेशन के लिए नहीं है बहुत ये माया की चाल होती है कंडीशन सोल को कंडीशन कर देती है वो अपने आप को सेटल महसूस करना शुरू कर देता है मतलब बस ठीक तो हूँ बढ़िया प्रसाद मिल रहा है सोलह माला चार नियम थोड़ी बहुत इधर उधर कर दिया काम हो गया नहीं इट्स वेरी डेंजरस बहुत ही डेंजरस जोन में हम वो व्यक्ति बहुत खतरे वाली स्थिति में माया के चुंबल में है और जो वक्त संघर्ष कर रहा है अपने मन के साथ गुरु की इच्छा के साथ मन कह रहा नहीं गुरु चाहते हैं ये अथॉरिटी चाहती है मन कह रहा नहीं संघर्ष करते हुए अथॉरिटी की इच्छा को पूरा कर रहा है गुरु की इच्छा को पूरा कर रहा है प्रार्थनाएं कर रहा है हेल्पलेस है एक्सीलेंट स्टेट वो भक्ति में इतनी कृपा को आकर्षित कर रहा है वो इतनी तीव्र प्रगति करेगा उसकी इतनी रियलाइजेशन होंगी इतनी कृपा मिलेगी उसको और हमेशा ऐसी हेल्पलेस स्टेट में जाएगा गुरु का कर्तव्य ही है जब गुरु किसी शिष्य पर विशेष कृपा करते हैं उसको ऐसी असहाय अवस्था में डाल देते हैं तो करो संघर्ष तमाल किशन गोस्वामी महाराज जिन्होंने जब सन्यास लिया तो वो जीबीसी भी थे सन्यासी भी थे और मुंबई मंदिर के प्रेसिडेंट थे गिरिराज स्वामी उनको जॉन्डिस हो गया तो उनको वापस जाना पड़ा अमेरिका तो तमाल किशन महाराज को बॉम्बे का भी इंचार्ज बना दिया अब वो सन्यासी भी हैं जीबीसी भी हैं और प्रभुपाद का एक आदेश सबको आ गया सारी जीबीसी को फंड कलेक्शन भी करना है उनको फंड कलेक्शन भी करना है वो जीबीसी भी हैं टेम्पल मैनेजमेंट भी करना है सन्यासी का प्रचार भी करना है इतनी जिम्मेवारियां आ गई कि भाई प्रभुपाद आए तो तमाक्ष महाराज उनसे मिलने गए और मिलने गए तो रो रहे थे क्या करूं क्या करूं क्या क्या दे दिया आपने आपने मैं सन्यासी बना दिया जीबीसी बना दिया टेंपल प्रेसिडेंट बना दिया फंड कलेक्शन कर दिया मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा कोई जिम्मेवारी नहीं रहा सब इधर भाग रहे हैं मैं बस लिटरली क्राइंग वो रो रहे थे प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे प्रभुपाद यू आर स्माइलिंग यस यू आर सो फॉर्चुनेट आप माया को मौका ही नहीं दे रहे कि आपके जीवन में प्रवेश करे वेरी गुड तो प्रभुपाद ने उनको एनकरेज करके भेज दिया कि इसी ढंग से आप पूर्ण रूप से अपने भगवान की सेवा में लगे तो इसलिए ऐसे हेल्पलेस स्टेट है तो बहुत अच्छी स्थिति है अदरवाइज इस बहुत ही जगत में हम कंफर्टेबल होने थोड़ी आए देवहूति माता कहती मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल हूं कैसे बाहर निकलूं और प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं जब तक कोई संसार में इनकन्वीनियंस महसूस ना करे अटपटा महसूस ना करे उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है और हम यहां कंफर्टेबल होने हैं मनुष्य जीवन मिला ही यही है कि यहां पे हम हमेशा हेल्पलेस स्थिति में रहे और प्रार्थना तभी तो प्रार्थनाएं करेंगे तभी तो कृपा को पुकारेंगे बहुत अच्छी स्थिति फॉर्चुनेट तो इसमें कंपेयर नहीं करना इसमें तो भगवान से प्रार्थना ही करते रहने हैं कि मुझे और आप चुनौती दे रहे हैं मैं कैसे इसको स्वीकार कर सकूं आपको प्रसन्न कर सकूं तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि किन भक्तों का हम संग करते ऐसे भक्तों का संग करना जो फोकस्ड नहीं है ऐसे भक्तों का संग करना जो इतने डिटरमाइंड नहीं है उनका संग करेंगे तो हम भी भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं तो हमें भी देखना है कि किन भक्तों के संग में हमें रहना है तभी हम हमेशा उत्साहित रहेंगे ठीक है तो आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन।
हरे कृष्ण भजन। थैंक यू ब्रजी, बहुत अच्छा लेक्चर था। जैसे आपने बताया कि हम जितना अयोग्य फील करेंगे, हेल्पलेस होंगे, उतना ही अच्छी स्थिति है, और उतना जितना हम सेवा में प्रेशर होगा उतना माया का प्रेशर नहीं रहेगा। तो कभी कभी ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से उल्टा प्रभाव भी हो जाता है। भक्त लोग, मतलब अपने जीवन में भी मैंने देखा है कि साधना डिस्टर्ब हो जाती है और फिर बाहर भी चले जाते हैं डिवोटीज। तो इसका
उसके लिए ये है, जो आपकी मनस्थिति है वो खुल के बताते रहें अपने मेंटर से, तो बैलेंस लाना पड़ेगा। मतलब साधना के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है, सेवा के प्रति भी है, साधना के प्रति भी है, संबंधों में भी हमारी जिम्मेवारी है। तो जब ऐसा बैलेंस बिगड़ रहा हो तो अपने हृदय खोलना चाहिए और फिर उनकी मदद से बैलेंस लाना चाहिए।
मैं भी जैसे देखा भी जाता है कि जैसे आपने तीन लेवल्स पे जिम्मेदारी जो बताया, तो जैसे साधना की पर्सनल जिम्मेदारी है, संबंधों की पर्सनल जिम्मेदारी है और सेवा की पर्सनल जिम्मेदारी है। तो इस सब में सबसे ज़्यादा फॉलोअप सेवा का होता है। तो जो डिवोटी है वो सेवा में ज़्यादा फिर परफॉर्म करना चाहता है, साधना का और संबंध का फॉलोअप होता नहीं है इतना। मतलब इस पर ज़्यादा जोर भी नहीं डाला जाता, मतलब रेगुलर लाइफस्टाइल में, लेक्चर्स में होता है। तो मतलब इसका फिर हम कैसे कर सकते?
नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली लेक्चर्स में ही होता है। अगर फॉलोअप कोई नहीं हो रहा तो फॉलोअप करवाएं, जिम्मेवारी मेरी है। अगर समझ लो बाई चांस फॉलोअप नहीं भी हो रहा तो करवा सकते हैं, अकाउंटेबल बन सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और बैलेंस हम नहीं ला पा रहे तो मदद लें, बैलेंस लाना आवश्यक है।
थैंक यू।
तो आप सबको फिर से, आपका हम सबका पूरा जीवन कृष्ण में रहे, भक्ति में रहे। 1st January 2019 is just an opportunity to reflect back, to remind us, to reorient ourselves कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और इस लक्ष्य प्रति हम किस तरीके से चल रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराशिमन भागवतम की, एकादशी महामहोत्सव की, जगद गुरु शिला प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंदे।